सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्माओं, उड़ उड़ जाओ दूर जाओ, क्यों बैठे पंख पसार, सुनो ओ पंछियों।
ओम शांति। आज का दिन हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि इस सभा के अंदर कई ऐसे बहन भाई बैठे हुए होंगे जो आज पहली बार परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण, साकार रूप में दिव्य अवतरण को अपनी आंखों से देख सकेंगे। हमें पूछो, आप में से ऐसे कौन कौन है जो आज पहली बार बाबा को मिलने के लिए साकार रूप में दिव्य अवतरण देखने के लिए आए हुए हैं? जरा हाथ तो खड़ा करें, काफी है। मैं समझता हूँ 50% ऐसे बहन भाई हैं जिनके लिए उनके जीवन में आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा भारी सौभाग्य का दिन है। परमात्मा का यह दिव्य कर्तव्य जो है हम सब जानते हैं संगम युग में ही होता है। परमात्मा क्या है ये सारी बातें भक्ति मार्ग में भी हम जानते थे, आप सब जानते थे, परंतु परमात्मा जीओडी कहते हैं ना, स्थापना पालना और विनाश, जीओडी जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, हाँ जो उनका नाम है उसी, जो उनके कर्तव्य है उसी के आधार पर उनका नाम है, उनके कर्तव्यों के आधार पर ये नाम हुआ है जीओडी। जैसे अंग्रेजी में न्यूज होता है, न्यूज शब्द जो है समाचार, न्यूज जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ चारों ओर से जो भी समाचार आए हुए खबर आई हुई है उसको जो एक साकार रूप में दिया हुआ है उसको न्यूज कहते हैं। उस प्रकार से गॉड परमात्मा को भी स्थापना पालना और विनाश के रूप में, अर्थात ये करने कराने की जिनकी ड्यूटी है जिम्मेदारी है और जिसके पास वो शक्ति है वो है परमात्मा। परमात्मा ने अपना दिव्य कर्तव्यों की झांकी पिछली मुरली में हम सबको बहुत स्पष्ट रूप में बताया था। बाबा अपने दिव्य कर्तव्यों की झांकी स्पष्ट शब्दों में नहीं बताते हैं, परंतु पिछली मुरली में जिन्होंने पिछली मुरली 18 जनवरी की मुरली अच्छी रीत से पढ़ी हुई होंगी उसमें बाबा ने एक ही वाक्य में कहा हुआ है कि अगर बाप चाहे, हाँ बाबा ने अपनी ऑथोरिटी बताई हुई थी कर्तव्यों की, कि अगर बाप चाहे तो विनाश एक सेकंड में हो सकता है, याद होगा आप सबको। बाबा ने अपनी ऑथोरिटी जो है, शक्ति जो है, महानता जो है, दिव्यता जो है, वो बाबा ने ये बता दिया एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में, कि अगर बाप चाहे तो। परंतु बाबा ने कहा जो उसके बाद आने वाली नई दुनिया पर राज्य करने वाले जो है वो तैयार नहीं है। अर्थात परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्यों के द्वारा अपना कर्तव्य जो है स्थापना का पालना का विनाश विनाश आदि की बातें जो है वो तैयार कर दिया है। स्थापना के लिए जो ज्ञान देना था वो भी कर दिया है, अपना कर्तव्य उन्होंने पूरा कर दिया है। परंतु क्या है, हमने अपना कर्तव्य अभी तक पूरा नहीं किया हुआ है, हम तैयार नहीं है। हम अगर तैयार हो, बाबा ने यही कहा कि आज मैं पर्दा उठा लूं तो क्या हो जाएगा, आप सब अपनी गद्दी पर बैठे हुए नहीं होंगे, कोई तैयार होगे, कोई मेकअप करता होगा, कोई क्या करता होगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा। सिनेमा के अंदर ड्रामा के अंदर राजा को गद्दी पर बैठना होता है, उसके बदले में वो अपने जूते का पॉलिश करता होगा तो क्या होगा, कैसा खराब लगेगा। इस प्रकार से हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अभी तक बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, हम बाबा ने अपना कर्तव्य समाप्त कर दिया, पूरा ही कर दिया कि मैंने जो करना था मेरे पास तो सब कुछ तैयार है, आप बच्चों ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया हुआ है, इसलिए हमें अभी अपना कर्तव्य पूरा करना है। और इसके लिए ही बाबा जो है हर समय आते हैं, मुरली सुनाते हैं। हाँ, बाबा को हम बच्चे पहले पूछते थे कि बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, कब होगा। अभी अभी क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। अभी बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि बच्चे, आप बच्चे कब तैयार होंगे, आप बच्चे कब तैयार होंगे। बराबर है बाबा, यही हम बच्चों को ही पूछ रहे हैं कि आप बच्चे कब तैयार होंगे। अब तक हम पूछते थे बाबा को विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, क्योंकि क्या है पहले हमें मालूम ही नहीं था। बाबा का ज्ञान मिला उसके पहले अभी तो थोड़े समय में विनाश होने वाला है, क्या है वो हमें मालूम ही नहीं था। अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में हम समझते थे कि अभी तो कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग अभी बच्चा है, और इसलिए हम आराम से चैन की नींद में सोए हुए थे कि होगा 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 होगा, परंतु क्या है मालूम ही नहीं था। मुझे मालूम है एक बार एक बहुत प्रखर बहुत बड़े विद्वान सन्यासी के पास हम गए थे। विद्वान सन्यासी के पास गए तो हमने उनको, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पास हमारी दादियों सहित हम गए थे, बॉम्बे के नजदीक में ही थे। तो हमने उनको बताया कि हमारी ये बहनें हैं, और ये बहनें जो है ना वो कहती हैं कि भी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत है, उसका ये संगम युग है, परमात्मा का अपना दिव्य अवतरण हुआ है। वो सन्यासी ने कहा, अरे ये किसने कहा अभी कलयुग का अंत है, अब तो कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है, अब तो कलयुग बच्चा है, अभी तो कलयुग बच्चा है और अभी तो 40,000 वर्ष बाकी है, आप कैसे कहते हो कि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम युग है, परमात्मा का दिव्य अवतरण का ये समय है, ऐसा कैसे कहते हो। जो सन्यासी ने कहा वही हम सब भी, हाँ बाबा का ज्ञान हमको मिला उसके पहले हम सब के पास भी यही ज्ञान था कि कलयुग अभी बच्चा है और अभी तो मौत से 40,000 वर्ष चलना बाकी है। उस प्रकार से हम समझते थे कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को मालूम था, सृष्टि का चक्र घूमता रहता है वो भी मालूम था, परंतु कैसे घूमेगा वो मालूम नहीं था। ये मालूम था दशा अवतार के आधार पर कि अभी अंतिम अवतार परमात्मा का होने वाला है, मालूम था ना, सभी को मालूम था भक्ति मार्ग में कि अंतिम अवतार जो है कल्कि अवतार होगा। बराबर है, मालूम था भक्ति मार्ग में सभी को मालूम था कि भक्ति मार्ग में कि कल्कि अवतार होने वाला है और उस कल्कि अवतार के समय पर ऐसा होगा कि जिसके आधार पर ये पुरानी सृष्टि का विनाश होगा और उसके आधार पर उसके बाद नई सृष्टि की रचना होगी। वो ये कैसा होगा ये हमें मालूम नहीं था। वो सन्यासी को भी हमने यही कहा कि अभी तो आप मानते हो कलयुग अब बच्चा है। तो मैंने कहा कि आपकी बात सही है, जब वो शास्त्र लिखे गए तब कलयुग बच्चा था, और तो अभी कलयुग बच्चा कैसे हो सकता है। फिर मैंने एक उनको मिसाल दिया, वो सन्यासी महाराज को मैंने एक मिसाल दिया, मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने समझो अपनी आत्मकथा लिखी हुई होंगी, उस आत्मकथा के अंदर लिखा हुआ होगा जब कि रमेश अभी 5 साल का बच्चा है, मेरा नाम रमेश है इसलिए उसमें मेरे पिताजी ने समझो ऐसा लिखा हुआ होगा रमेश अभी 5 साल का बच्चा है, और फिर मैं आपके पास आकर के बताता हूं कि मेरे पिताजी की आत्मकथा है और मैं वही रमेश हूं जिसके बारे में अंदर लिखा हुआ है कि रमेश अभी 5 साल का बच्चा है, तो आप मुझे मानेंगे कि मैं वही रमेश हूं या आप कहेंगे 5 साल का रमेश बच्चा जो है वही मेरे सामने आए तब मैं उसको मानूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो जब आपके पिताजी ने किताब लिखी तब आप 5 साल के बच्चे थे, अभी तो आप बड़े हुए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी ने किताब कल लिखी और आज आप लाए हो, जब वो लिखी गई तब आप 5 साल के बच्चे थे, और बीच में तो बहुत समय बीत गया है, और इसलिए आप बच्चे में से जवान भी हो गए हैं। तो मैंने कहा कि इसी प्रकार से ऐसा ही है, ये शास्त्र के कल नहीं लिखे गए हैं। जो आपको कलयुग अब बच्चा है तो अभी भी बच्चा होना चाहिए। जब शास्त्र लिखे गए तब कलयुग बच्चा था, जब शास्त्र लिखे गए तब बच्चा था, अभी तो उसके अंदर उसकी भी समय में समय के कारण जवानी आई होंगी, वृद्ध अवस्था भी आई होंगी, आपको क्या मालूम। इतना तो आप मानते हो कि कलयुग अब बच्चा नहीं है। तो सन्यासी महाराज ने कहा कि हाँ हाँ, कलयुग अब बच्चा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं तो वृद्ध नहीं तो जवान तो हुआ ही है। हमने कहा चलो इतना तो माना। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे शास्त्रों की जो है ब्रह्मा कुमारियां जो है ना ग्लानी करती है, कहती है कि शास्त्र जो है ना वो द्वापर युग में लिखा गया ऐसा बताते हैं। हम कहते हैं, वो सन्यासी ने कहा, हम कहते हैं कि हमारे शास्त्र तो अनादि हैं, सृष्टि की शुरुआत से ही बने हुए हैं। तो मैंने फिर से वो सन्यासी महाराज को कहा कि देखिए मेरे पिताजी की किताब जो है उसमें लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है, और मैं कहूं कि मेरे पिताजी की किताब भी अनादि है, सृष्टि की शुरुआत से ही लिखी हुई मेरे पिताजी की आत्मकथा है, तो आप मानेंगे। तो कहा मैं कैसे मानूंगा। मैंने कहा क्यों, कहा उसमें लिखा हुआ है रमेश अभी 5 साल का बच्चा है, इसका मतलब ये हो गया कि रमेश जब 5 साल का था तब वो किताब लिखी गई, इसलिए ये हम नहीं मान सकते हैं कि आपके पिताजी की आत्मकथा अनादि है। आप समझ गए मेरी बात को, इसमें लिखा हुआ है कि रमेश अब 5 साल का बच्चा है, माना जब रमेश 5 साल का बच्चा था तब वो किताब लिखी गई, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पिताजी की किताब आत्मकथा जो है वो अनादि नहीं है, परंतु जब रमेश 5 साल का बच्चा था तब लिखी गई। मतलब कब लिखी गई उसका अंदाज आ सकता है कि रमेश 5 साल का बच्चा था तब लिखी गई। तो मैंने कहा, मैंने पहले उनसे कहा था कि आप यही बताओ कौन से शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि कलयुग अब बच्चा है। तो इन्होंने 8-10 शास्त्रों का नाम दे दिया कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने सब लिख लिया कि इन शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अभी बच्चा है। तो तब मैंने बाद में कहा कि जैसे मेरे पिताजी के किताब में लिखा हुआ है कि रमेश अभी 5 साल का बच्चा है, और उसके आधार पर आपने कहा कि जब रमेश 5 साल का बच्चा था तब ये किताब लिखी गई, ये किताब अनादि नहीं है, माना सृष्टि की शुरुआत से ये किताब नहीं थी, जब रमेश अभी 5 साल का बच्चा था तब ये लिखी गई। उसी प्रकार से मैंने कहा कि अगर इन शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है, माना वो कब लिखा गया। आप समझे मेरा सवाल, शास्त्र में लिखा है कलयुग अब बच्चा है, माना वो कब लिखा गया, जब कलयुग बच्चा था तब। बराबर है, शास्त्र में जब उसमें लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है, इसका अर्थ ये हो गया कि जब कलयुग बच्चा था तब ये शास्त्र लिखे गए। तो मैंने कहा जब इसमें ही लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि शास्त्र अनादि है। आप समझे मेरी बात को, इसी किताब में लिखा हुआ है, इन शास्त्रों में 10-12 उन्होंने बताया, इन सब में लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है, इसका मतलब ये जब कलयुग जब बच्चा था तभी ये लिखा गया है, इसके मतलब द्वापर में शास्त्र नहीं थे, त्रेता में नहीं थे, सतयुग में नहीं थे। तो मैंने कहा कि आप तो कहते हो ये शास्त्र अनादि है, और इन्हीं किताबों में इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है, तो अनादि कैसे हुए। और आप कहते हो कि ब्रह्मा कुमारियां शास्त्रों की ग्लानी करती है, इसके बदले में तो आप लोगों ने ग्लानी किया है, आप लोगों ने लिखा हुआ है कि शास्त्र अभी, आप लिखा हुआ है कि शास्त्रों में लिखा है कलयुग बच्चा है। आपसे तो ज्यादा ब्रह्मा कुमारियां इन शास्त्रों का गौरव गान करता है कि वो द्वापर की शुरुआत में लिखा गया, आप तो कलयुग की शुरुआत में जब कलयुग बचा था तब लिखी गई ऐसी बात बता रहे हो। हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती है द्वापर युग से लिखा गया है, मतलब इसकी अवधि जो है आपसे भी हम दूर लेके जाते हैं, और आप कहते हो अनादि, अनादि तो है नहीं। तो वो सोच समझ गया कि हमारे शास्त्रों की क्या लिमिटेशन है। कारण यही है कि परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में जो अंदाज लगाना चाहिए क्या होना चाहिए क्या है मालूम नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था। सबका ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है ना उसके बारे में अंदाज है कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची। दुनिया के हर एक धर्म के अंदर आप जाएंगे तो परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में अंदाज ही है, स्पेकुलेशन ही है, अनुमान ही है कि परमात्मा की ने सृष्टि कैसे रची। आप जानते हैं अंग्रेज क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से क्या हो गया कि स्वर्ग के अंदर था, वहां से आदम और ईव जो है ना वो उसमें से मतलब जानते हैं एप्पल जो था वो खाया और उसके कारण क्या हो गया। वो सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है वो क्रिश्चियन धर्म के अंदर उस प्रकार से बताई गई कि ऐसे सृष्टि की रचना हुई। हर एक अलग धर्म ने अलग अलग तरीके से अपना विचार बताया हुआ है क्योंकि उस समय पर क्या था मालूम नहीं है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी सृष्टि की रचना कैसे हुई वो भी अंदाज है क्योंकि किसी को परमात्मा के कर्तव्यों का सही ज्ञान नहीं है। विज्ञान के अंदर भी अंदाज ही है, स्पेकुलेशन ही है। विज्ञान भी इन बातों में वास्तविकता के आधार पर नहीं जा सकता है क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तब विज्ञान और वैज्ञानिक थे ही नहीं। विज्ञान के आधार पर विज्ञान के अंदर सृष्टि की रचना के बारे में तीन सिद्धांत है। एक सिद्धांत के आधार पर ऐसा है कि 600 करोड़ वर्ष पहले सृष्टि की रचना हुई। दूसरे विज्ञान की थियरी है उसके आधार पर यह है कि सृष्टि की रचना 500 करोड़ वर्ष के पहले हुई। अब दोनों गलत कैसे, दोनों सच्चे कैसे हो सकते, एक के हिसाब से 600 करोड़ वर्ष, दूसरे के हिसाब से 500 करोड़, बीच में 100 करोड़ मामूली फर्क नहीं है, 100 करोड़। और तीसरी थियरी है उसके मुताबिक सृष्टि की रचना जो है 60 करोड़ वर्ष पहले हुई। अब सबका ही अंदाज है, सबका स्पेकुलेशन है, 600 करोड़, 500 करोड़ और 60 करोड़। कहां 60 करोड़ और कहां 600 करोड़, बीच में 540 करोड़ का फर्क है। 540 करोड़ वर्ष का फर्क है ऐसे मतलब है। और फिर भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमारी सिद्धांत जो है, हमारा जो है वो वैज्ञानिक है, हमारा सब सिद्धांत जो है हम जो मानते हैं वो ही सत्य है। किसी को ही मालूम नहीं है क्योंकि कारण यही है कि सबने सब रचना है, रचना को रचयिता ने कैसे रचना की वो मालूम नहीं होता है। हर माँ बाप को मालूम होता है कि अपने बच्चों का जन्म कैसे हुआ क्या हुआ क्योंकि माँ बाप ने बच्चों का जन्म लिया, माँ बाप उसके रचयिता है। बच्चे को मालूम नहीं होता है कि मेरा जन्म कब हुआ क्या हुआ कहाँ हुआ, माँ बाप जब बताते तब बच्चे को मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी थियरी है वो रचना ने रचयिता के बारे में अंदाज लगाया हुआ है। जितना भी आप इसके बारे में हम विचार करें, एक एक धर्म की एक एक फिलोसॉफी के इसे के बारे में बताएं कैसे करें। हिंदू धर्म में भी देखो कितने विचार है परमात्मा के रचनाकार के बारे में। अद्वैत सिद्धांत अपना है, एक ही परमात्मा है, उसने ही सारी दुनिया रची है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य लिखा हुआ है, उसके ऊपर रचनानुवत्त परमात्मा ने रचना की। क्यों रचना की उसको प्रश्न नहीं पूछ सकते कि उसको इच्छा हो, लीलावत्तु कैवल्यम, लीला करने के लिए परमात्मा ने रचना की। परमात्मा को इच्छा हुई कि मैं सृष्टि पर जाकर के लीला करूं और इसलिए रचना किया। एक विचार ये है परमात्मा के कर्तव्य के बारे में, लीलावत्तु कैवल्यम, लीला करने के लिए परमात्मा ने रचना की। उपनिषद के अंदर अलग विचार है, तैतरीय उपनिषद है, उसके अंदर परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में अलग विचार है। जो अभी आपने गीत सुना, सुनो ये पंछिया उड़े उड़े जाओ, मतलब जो है आत्माएं है उड़े जाओ, बहुत सुंदर गीत है, हमको बहुत पसंद है। हमने थोड़े दिन पहले फिर से ये सुना, 10-12 वर्ष पहले हम लोगों ने ये गीत बनाया था जो आप सुन रहे हो। तो ये गीत जो है उसमें है पंछी को उड़ने के लिए परमात्मा जो है आया है और साथ में उड़ा करके ले जाने के लिए आया हुआ है। ये गीत तैतरीय उपनिषद के आधार पर बना हुआ है। तैतरीय उपनिषद जो है उसके अंदर यही है, द्वास उपर्णा सविजा सखाया है, इस प्रकार से वो तैतरीय उपनिषद है कि एक ही वृक्ष की डाल जो होती है, ब्रांच ऑफ द ट्री जो होती है, उसके ऊपर दो पंखी बैठे हुए थे। दो पंखी में एक है जीव और दूसरा है शिव। देखिए परमात्मा के कर्तव्यों के लिए एक रूपक के रूप में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा और आत्मा दो पंखी थे, दो पंखी एक डाल पर बैठे हुए थे। उसमें से जो जीव नाम का पंखी जो था वो वहां से उस डाली से उड़ करके इस पृथ्वी पर आया और यहां पर रहने लगा। रहते रहते क्या हो गया, यहां का ही हो गया, यहां का ही हो गया, अपने को यहां का ही समझने लगा, अपना ओरिजिनल घर जो है वो भूल गया। और परिणाम रूप क्या हो गया, यहां ही रहते रहते हो गया। इसके कारण क्या है, शिव जो है, शिव का रूपी जो पंखी जो है, फिर वहां से नीचे आ करके जो जीव रूपी पंखी है उसको कहते हैं, चलो भाई वापस घर को उड़ पर जाना है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा असली घर तो वो है जहां से तुम इस सृष्टि पर आए हुए हैं, तो वो है परमात्मा का घर, वहां जाना है। तो देखिए एक थियरी जो है अद्वैत की, परमात्मा ने लीलावत्तु कैवल्यम के लिए परमात्मा के कर्तव्य को लीला के रूप में बताया। दूसरी थियरी है उसके आधार पर क्या बताया, दो पंखी है, एक पंखी नीचे आया उसको वापस ले जाने के लिए, दूसरा पंखी शिव जो आता है वो वापस उसको ले जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के कर्तव्य को बताया। सांख्य शास्त्र है, देखिए एक ही शास्त्र अलग अलग शास्त्रों में, सांख्य शास्त्र में बताया है कि तीन अलग अलग है। अद्वैत के अंदर एक ही परमात्मा जो है उसमें उसके द्वारा सब कुछ रचना हुई और आखिर जो है ना सारी सृष्टि की रचना जो है वो फिर उसमें ही लीन हो जाएगा, अद्वैत ही रहेगा। सांख्य शास्त्र में है तीन अलग अलग है, प्रकृति आत्मा और परमात्मा, तीनों ही अलग अलग है, सदा ही अलग रहते हैं, कभी मिक्स नहीं होते। और आत्मा भी अगर संपूर्ण बनता है तो परमात्मा के बाजू में जाकर के बैठेगा और तो लीन नहीं होगा। और जब जरूरत पड़ेगी तब परमात्मा जो है ये आत्माओं को ऐसे जो साथ में बैठे हुए राइट हैंड बनकर के बैठे उसको यहां पर भेजेंगे, जाओ तुम अपना काम करके आओ, थोड़ा इस सृष्टि में ना बातें बहुत बढ़ गई है, विकारों की पापाचार बढ़ गया है, जाओ ठीक करके आओ। इस प्रकार से परमात्मा पैगंबरों के रूप में यहां भेजते हैं, धर्म स्थापक के रूप में भेजते हैं। इस प्रकार से तीनों ही सांख्य शास्त्र के हिसाब से परमात्मा अलग, प्रकृति अलग और हम आत्माएं अलग सदा काल के लिए रहते हैं, ये ऐसी उनकी मान्यता है। अलग अलग धर्मों की अलग अलग इस प्रकार से मान्यताएं, इतनी अलग अलग है, इतनी अलग अलग है कि बात नहीं पूछो कि इसके कारण क्या है। जितने धर्म स्थापक हो गए, जितने धर्म हो गए और उसमें से जितने संप्रदाय हो गए, इन सभी संप्रदायों ने परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में अपने अपने विचार बताए। सब यही बात तो कहते हैं परमात्मा है, तो एक परमात्मा कौन है उसके बारे में साथ में बैठकर के कभी कोई विचार नहीं करता है। और सभी यही कहते हैं कि परमात्मा के ऐसे ही कर्तव्य हो गए, ऐसे ही सब अपने अनुमान के आधार पर कारोबार करते हैं। बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु हो गए, नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु, बहुत प्रसिद्ध सन्यासी महात्मा हो गए 400 साल पहले। एक ही गुरु के फॉलोअर्स है चैतन्य महाप्रभु के, वहां पर दो संप्रदाय बन गए एक ही गुरु के। एक संप्रदाय कहता है कि गुरु जी ने जो कर्तव्य किए गुरु जो ने कहा कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, एक ही गुरु के मानने वाले कहते हैं कि गुरु ने कहा है मूर्ति पूजा होनी चाहिए, और वो ही चैतन्य महाप्रभु को मानने वाले दूसरा संप्रदाय है वो कहता है कि गुरु जी ने कहा है मूर्ति पूजा नहीं होने वाली। एक ही गुरु के दो संप्रदाय बन गए, क्योंकि कर्तव्यों के बारे में कैसे कहा होता है वो बताया नहीं है, मालूम नहीं है दोनों को। परिणाम रूप क्या हो गया, दोनों ही ग्रुप, दोनों ही संप्रदाय एक ही गुरु के विचारधारा से बने हुए दोनों ग्रुप के बीच में आपस में झगड़े होते हैं। इतने तक झगड़े होते हैं कि दोनों एक दूसरे के ग्रुप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने लोग उसमें दोनों के बीच में युद्ध जो हुए उसमें मर गए। कभी भी साथ में बैठकर के विचार नहीं करते कि हम एक ही गुरु के हैं, एक ही गुरु ने क्या ज्ञान दिया, एक ही गुरु ने क्या कर्तव्य सिखाया, उसके बारे में आपस में बैठ करके राय सलाह करें। युद्ध करने से क्या होगा, अंग्रेजी में बहुत एक सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है, वॉर डज नॉट डिसाइड हु इज राइट, वॉर डज नॉट डिसाइड हु इज राइट, इट डिसाइड्स ओनली हु विल बी लेफ्ट। बहुत सुंदर वाक्य है, जो अंग्रेजी जानते होंगे और गहराई में जाएंगे उनको मालूम होगा कि वॉर डज नॉट डिसाइड हु इज राइट, युद्ध के द्वारा सच और झूठ क्या है वो नक्की नहीं हो सकता है। वॉर ओनली डिसाइड्स हु विल बी लेफ्ट, माना दोनों के साइड में जो युद्ध में बचे होगा उनको मरने के बाद कौन बचेगा वो ही बताते हैं। हु विल बी लेफ्ट, लेफ्ट माना राइट लेफ्ट की बात नहीं है, लेफ्ट माना कौन बचेगा। क्योंकि इस प्रकार से होता है युद्ध के नाम कितना होता है, परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को नहीं जानने के कारण, धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानने के कारण सबसे ज्यादा में ज्यादा युद्ध धर्म के नाम पर हुआ है, सबसे ज्यादा में ज्यादा हिंसा धर्म के नाम पर हुई है। कारण यही है कि परमात्मा के कर्तव्यों को लोगों ने नहीं जाना, और सब समझते हैं कि हम जो मानते हैं ना वो ही परमात्मा के कर्तव्य है, यही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का रूप यही विचारधारा यही फिलॉसफी है। और इसके कारण क्या हो गया, अलग 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 विचारधाराएं बनती गई हर एक धर्म में संप्रदाय बनते गए परमात्मा के कर्तव्यों को अच्छी रीति से नहीं जानने के कारण। एक मिनट, इतने तक समाज में संप्रदाय बन गए हैं। इंग्लैंड के अंदर विभिन्न धर्म हैं, वहां के लोगों ने स्टेटिस्टिक्स निकाली हुई है कि वहां पर संप्रदाय धर्म बाबन ने चार मुख्य बताए, बाकी तो अलग है, 10 धर्म होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के निकले हुए हैं। उसमें से इंग्लैंड के अंदर 5,000 संप्रदाय हैं, अमेरिका के अंदर एक ही क्रिश्चियनिटी धर्म की बात करें, चर्च के बारे में बात करें तो 267 प्रकार की वहां पर अलग अलग मान्यता रखने वाली चर्च है, अलग अलग। सैक्रामेंटो शहर में अभी हम गए पिछले साल, वहां गए तो एक ही शहर में 700 अलग अलग प्रकार के मान्यता वाली चर्चेस अलग अलग एक ही शहर में थी, 700। उसमें से एक संप्रदाय का जो है एक भाई जो है हेड, अभी 8 तारीख को भारत में यहाँ आएंगे बाबा को मिलने के लिए, 8 से 16 तारीख तक यहाँ रहने वाला है। पिछले साल दूसरा आया था मिस्टर मारन करके, वो अलग संप्रदाय के हेड था। इस प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग विचारधारा है, और ये संप्रदाय मूल के साथ भी नहीं मानने लिए तैयार है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, आप बुरा मत लगाना मेरी बात सुनकर के, परंतु कई संप्रदाय ऐसे हैं जो जिसमें से वो निकले हुए उस बात को मानने लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर, अब मैंने आपको पहले ही बताया, किसी की मान्यता की ठेस पहुंचे तो माफ करना मेरी बात सुन करके, पर तो बंगाल के अंदर रामकृष्ण मिशन तो नाम तो सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आदि का नाम तो सुना हुआ होगा। आप सब मानते हैं कि वो हिंदू धर्म के कनेक्शन के हैं, बराबर है, हिंदू धर्म के कनेक्शन के हैं, मानते हो ना। रामकृष्ण मिशन वाले कहते हैं हम हिंदू धर्म के नहीं हैं, हमारा अलग धर्म है, अलग विचार है, हम हिंदू धर्म के कनेक्शन के नहीं हैं। इतने तक कि कलकत्ते हाईकोर्ट के सामने गए वो लोग, कलकत्ते हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आप हिंदू हैं, उन्होंने कहा नहीं हम हिंदू नहीं हैं। उसके विरुद्ध में वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमको डिक्लेयर किया जाए कि हम हिंदू नहीं हैं। अभी कोर्ट में जाकर के कहना पड़ता है उनको कि आप डिक्लेयर करो कि हम हिंदू नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं आप हिंदू संप्रदाय के, हिंदू धर्म के ही है, संप्रदाय भले अलग होगा परंतु धर्म आपका हिंदू है। बोलिए, अपने आप को, अपनी विचारधारा जिससे वो निकला हुआ है, वही रामकृष्ण मिशन। आप विवेकानंद जी का प्रवचन सुनिए, रामकृष्ण का जीवन वृत्तांत पढ़ा होगा, उसमें देखिए देवी भक्त थे, काली के भक्त थे, पढ़ा हुआ है ना। परंतु फिर भी आज के संप्रदाय वाले कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा के कर्तव्य को जानते नहीं अच्छी तरह से, इसलिए अपने आप को हिंदू धर्म कहते, नहीं कहते हम अलग है हिंदू धर्म से। इतने तक हरे राम हरे कृष्ण सुना हुआ है ना, हरे राम हरे कृष्ण, क्या है उसका नाम है इस्कॉन, इस्कॉन वालों को भी पूछा गया आप हिंदू हैं, इनके अंदर मंदिर में जाओ उसमें सभी मूर्तियां है, सब कुछ है, इन्होंने कितने सुंदर सब जगह पर मंदिर बनाए हुए, अहमदाबाद में जाओ अक्षरधाम बनाए, अभी दिल्ली के नजदीक में बनाया हुआ है, बनाया है ना सब जगह पर, उन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय ने भी बनाया हुआ है, सब जगह पर अपने अपने इस्कॉन वालों ने बनाया हुआ है, हर कई जगह पर मंदिर बनाया है, स्वामी नारायण संप्रदाय ने बनाया है, हर इस्कॉन वालों ने बनाया है। इन्हों से आप पूछो वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को उन्होंने समझा ही नहीं है, और इन्होंने अपने को, अपनी विचारधारा, जो मूलभूत विचारधारा है, उनसे अलग समझ करके कारोबार करते हैं। परमात्मा ने क्या किया, श्री बाबा ने आकर के क्या किया, जो वास्तविकता जो है ना, इस वास्तविकता का परिचय हमें कराया। कोई हमसे पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर क्या है, मैं यही बताता हूं सबको कि परमात्मा ने आकर के हमें, हमारी वास्तविकता, हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम कौन है, सृष्टि कौन है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये सब बातों की वास्तविक परिचय परमात्मा ने दिया जो हम पहले नहीं जानते थे। यही यह विश्वविद्यालय की महानता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के रूप में कहूं, पहले मानते थे कि घर बार छोड़ना ही, तब ही घर बार छोड़ेंगे तब ही आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेंगी। जैन धर्म के अंदर परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में एक मान्यता है कि आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो आपको घर बार छोड़ना ही पड़ेगा। अगर घर बार में रहे, संन्यास नहीं किया, घर में रहे, आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकेंगे। मेरा एक क्लाइंट, एक मित्र है, वो 70 वर्ष का था तब उसने घर बार छोड़ने का नक्की किया, संन्यास धारण करने का प्रयत्न किया। मेरे को आकर के उसने निमंत्रण पत्र दिया, मैं फलाने दिन पर सन्यासी बनने वाला हूं, आप आना मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कहा क्यों भाई, आप इस उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में क्यों सन्यासी बनना चाहते हो? कहा हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि अगर मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो मुझे घर बार छोड़ना ही चाहिए। घर बार में रहने वाले जो है ना वो कभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे। परमानेंट घर बार छोड़ना चाहिए। बौद्ध धर्म ने फिर क्या किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, हर एक ने अपना अपना मॉडिफिकेशन किया। बौद्ध धर्म ने कहा आप थोड़े समय के लिए भी संन्यास धारण कर सकते हैं, 15 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 मास के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कर सकते हैं। एक जमाने में बर्मा का जो प्राइम मिनिस्टर था, जैसे यहां होता है ना कहीं एमएलएस जो होते हैं कि इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, मुंडन कराएंगे, ऐसी मन्नत मानते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में भी ऐसी मन्नत मानते हैं कि हम ये जीत गए तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जैसे यहाँ पर जाते हैं हम मुंडन कर तिरुपति जाकर के आते हैं। पहली पार्लियामेंट जब हुई हिंदुस्तान की तो उसमें 4 MP ऐसे थे वो फॉरेन तिरुपति गए थे मुंडन करा करके फिर दिल्ली के उसमें आए हुए थे मान्यताओं के आधार पर। हर एक यही मानता है। तो यही वहां गौतम वहां बौद्ध धर्म के अंदर भी यही था। नेवीन करके वहां पर बर्मा का जो चीफ मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर बना, उसने नक्की किया था कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनू तो मैं 15 दिन के लिए सन्यासी बनूंगा। बाबा ने आकर के क्या किया, वास्तविकता बताई परमात्मा के कर्तव्यों के आधार पर। हमको जीवन की वास्तविकता मालूम पड़ती है कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना है तो विकारों को छोड़ना है। बराबर है, परमात्मा ने ये विकारों को छोड़ने की बात बताई। बाकी सन्यास लेकर के जाके जंगल में भी जाकर के फिर यही विकार आदि तो वहां भी हो सकते हैं, क्रोध आदि सब कुछ हो सकते हैं। आप जानते हैं शास्त्रों में ही है दुर्वासा क्रोध का साक्षात स्वरूप दुर्वासा के रूप में है ना। मालूम है दुर्वासा को दुर्योधन ने भेजा, महाभारत में कथा है, दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा कि जाओ आप पांडवों के पास जाओ, आपको बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, आप दोपहर में जाना। उनके पास अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, इसलिए सुबह जाएंगे तो अक्षय पात्र से फौरन फटाफट अन्न मिल जाएगा, और दोपहर में जाएंगे अक्षय पात्र धुलाई करके रख दिया होगा तो फिर उसमें तो 24 घंटे तक भोजन नहीं मिलने वाला था, तो उसकी परीक्षा करने के लिए। और दुर्वासा तो क्रोध का अवतार था, इसलिए उनको भेजा कि दोपहर में जाओ। वो दोपहर में गए द्रौपदी के पास कि भोजन दो। द्रौपदी मूंझ गई, अभी कहां से मैं भोजन लाऊंगी, बस तो होशियार थी, आप जानते हैं बहनें तो बहुत अच्छी होशियार होती। उसने कहा कि महाराज आप स्नान पानी करके आओ, इतने में मैं भोजन तैयार रखती हूँ। तो सन्यास बिचारे दुर्वासा गए भोजन आपने स्नान पानी करने के लिए अपने शिष्य मंडल सहित। उधर द्रौपदी ने भगवान को याद किया कि कृष्ण भगवान ये मेरे पास परीक्षा आई है, दुर्वासा आए हुए, अगर अभी श्राप देंगे मालूम नहीं क्या से क्या हो जाएगा। देखिये कथाओं में क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो कृष्ण वहां हाजिर हो गए, हाजिर हो गए। उसने भी आकर के कहा द्रौपदी मुझे को भूख लगी हुई है, मेरे को खाना दो। अरे कहा आपको तो मैं इसलिए याद किया कि आप मेरी भी समस्या को दूर करो, उसके बाद आपने भी आकर के यही समस्या बताई। कहानियां है ना, बहुत रोचक कहानियां है। शास्त्र पढ़ो तो उसको कहानियों के रूप में पढ़ो तो बहुत मजा आती है। तो कृष्ण ने कहा कि अगर आप आपका अक्षय पात्र देखो उसमें कुछ तो होगा, कना दाना होगा, देखो तो सही। तो द्रौपदी ने अपना अक्षय पात्र को देखा तो उसमें एक तांदरिया की भाजी जो होती है ना उसका एक कणा दाना चिटका हुआ था। शास्त्रों में मालूम, जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है वही लाओ मुझे दे दो मैं खा लूंगा। वो कृष्ण को दिया, कृष्ण ने खाया। देखो परमात्मा के कर्तव्य कैसे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। शास्त्र को खाया और भगवान की तृप्ति हो गई। उधर क्या हो गया, उस तृप्ति के आधार पर दुर्वासा आदि सभी मुनि के पेट भी भर गए, एक ही कहानियां हैं। और दुर्वासा ने समझे सभी सन्यासियों का हमारा अभी तो पेट भर गया, अब हम जाएंगे द्रौपदी ने खाना बनाया होगा, खाना नहीं खा सके द्रौपदी हमारे पर गुस्सा करेंगे, हमको श्राप देंगे। तो इसलिए दुर्वासा ने कहा चलो भागो यहां से। वो बेचारे दुर्वासा जो है ना भाग के चले गए। देखिए ऐसे परमात्मा के कर्तव्यों की शास्त्रों में कहानियां लिखी हुई है। उधर द्रौपदी बैठी रही कि अभी आएंगे आएंगे आएंगे, आया ही नहीं। फिर कृष्ण ने बताया कि वो तो भाग गए, मैंने ऐसे लीला किया कर्तव्य ऐसे किए वो भाग गए। देखिए ऐसे ऐसे कहानियां हैं शास्त्रों में। बाबा ने वास्तविकता बताई हुई है कि मैं हमको कोई पूछते हैं आप हिंदू हैं, मैंने आपको बताया रामकृष्ण मिशन वालों को पूछते हैं वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम स्वामीनारायण संप्रदाय वालों को पूछो कि हम हिंदू नहीं है, इस्कॉन वालों को पूछो हम हिंदू नहीं है, और हमको कोई पूछे आप हिंदू है तो हम क्या कहते हैं। हमको परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्यों के द्वारा वास्तविकता बताई कि हिंदू क्या है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति अनेक प्रकार की है। यहाँ हिंदू मतलब हिमालय जो है इसकी हिमालय की इस साइड में, और साउथ में हिंदू सरोवर था उसका हिंदू करके, तो ही और हिंदू के बीच में जो रहने वाले जो है वो हिंदू ऐसा है, या तो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले जो है हिंदू, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की मान्यताएं शब्दों के आधार पर है। भारत, हम भारत के शब्द जो है हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान को भारत कहते हैं, उसके बारे में भी रचना के बारे में भी ऐसे ही मान्यता है कि भरत राजा जो हो गया दुष्यंत का, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, और भरत राजा के आधार पर इस देश का नाम भारत हुआ। हमने गालामृत में लिखा हुआ है कि माँ के आधार पर बेटे का नाम होता है या बेटे के नाम पर भारत माँ का नाम होता है, किसके नाम पर होता है? माँ या बाप के आधार पर होता है ना। वासुदेव, कृष्ण का नाम वासुदेव के अंग, वासुदेव का पुत्र इसलिए वासुदेव। अर्जुन को कौंतेय कहते हैं क्योंकि कुंती पुत्र था इसलिए कौंतेय कहते हैं। माँ के नाम पर या बाप के नाम पर, वासुदेव का पुत्र इसलिए वासुदेव। इसलिए माँ बाप के नाम पर बच्चे का नाम होता है, बच्चे के नाम पर माँ बाप का नहीं होता है। परंतु इतिहासकारों ने और धर्म के लेखकों ने क्या कर दिया, बच्चे के नाम पर माँ का नाम बना दिया कि भरत राजा के आधार पर भारत हुआ। हमने कहा कि ये गलत बात है, परमात्मा ने अभी हमको बताया हुआ है भारत शब्द का अर्थ। मैंने हजारों पुस्तकों पढ़े हुए, इसमें परमात्मा ने जो भारत शब्द का अर्थ बताया है हमें, ऐसा किसी ने भी नहीं बताया है कि जिसको परमात्मा ने भर्तु माना संपूर्ण, जिस परमात्मा के जिन दिव्य कर्तव्यों के आधार पर जो भर्तु हुआ संपूर्ण हुआ वो है भारत। आप समझे, भर्तु संपूर्ण बनाया, भारत देश में परमात्मा ने दिव्य अवतरण धारण कर करके भारत को संपूर्ण बनाया, माना कैसा संपूर्ण, बाबा ने वो भी बताया 16 कला संपूर्ण है ना, सबको मालूम है बाबा के दिव्य कहते हो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म, ऐसा जो है देश ऐसी दुनिया ऐसा सतयुग परमात्मा ने रचना की हुई है, यह परमात्मा का कर्तव्य। परमात्मा हमें 16 कला संपूर्ण बनाता है, कोई भी एक कला नहीं, वास्तविकता हर चीज की बताता है। अभी तक हम भक्ति मार्ग में समझ देते हैं, क्या समझ देते हैं, घर बार छोड़ने क्यों छोड़ना पड़ता है, माया है, स्त्री को माया समझा, धन को माया समझा, और इसलिए घर बार छोड़ करके जाते थे। अपने पास सन्यासियों का सम्मेलन हुआ था, संत महामंडलेश्वरों का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर अखिल भारतीय साधु समाज के सेक्रेटरी आए हुए थे। इन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही थी, कहा कि हिंदू धर्म के अंदर परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी। उसके अंदर एक भ्रांति ये थी कि स्त्री को माया समझते थे और हम सब ने स्त्री को और धन को माया समझ करके उसको छोड़ने के लिए संन्यास करने के लिए बताया हुआ था। समाज का अंग जो है 50% पुरुष है 50% स्त्री है, उसमें से समाज के 50% अंग जो स्त्री था उसके प्रति हमने दुर्व्यवहार कर करके उसको माया समझ करके इतने हद तक, माफ करना एक शब्द बताता हूँ, एक सन्यासी की किताब में लिखा हुआ है, सन्यासियों के लिए, माफ करना मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ था नारी से नागण भली। बोलिए इतने हद तक नारी की बारे में लिखा हुआ है, नारी से नागण भली, इस प्रकार से ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई। समाज के एक 50% अंग जो है जीवन का पहला, जिसके द्वारा समाज की रचना हुई, जन्म दाता सबके लिए जो है, उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है। इन्होंने कहा इसके अंदर हमारे पर सम्मेलन में ओम शांति भवन के अंदर के, कि समाज का जो अंग, जो मुख्य अंग है 50%, उसकी हमने जो हमने तिरस्कार किया, इन्हीं अंग को परमात्मा ने आकर के आगे रखा, अपने दिव्य कर्तव्यों के अंदर ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखा, परमात्मा ने कन्याएं माताओं के ऊपर रखा, और उनके द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य का प्रारंभ किया परमात्मा ने। और इस अर्थात जो जिसको हम लोगों ने उपेक्षित समझा, परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्यों के अंदर उसी उपेक्षित जो पक्ष था, उपेक्षित नारी समाज था, उसकी महिमा आगे बढ़ाई, और उसकी महिमा आगे बढ़ा करके उसके द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करके हिंदू धर्म के अंदर जो हम लोगों ने नारियों को अन्याय किया था, उस अन्याय को दूर कर करके हमारी गलती को शिव परमात्मा ने आकर के क्या किया, पूर्ण किया। हमारी गलतियां, मतलब हमारी जो गलतियां थी, कमी जो थी, उसको दूर करके के नारी समाज के द्वारा समाज को श्रेष्ठ बनाने का दिव्य कर्तव्य परमात्मा जो कर रहे हैं, जो एक बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक क्रांति का बीज नारियों के द्वारा, इन माताओं बहनों के द्वारा कर रहे हैं, जरूर आपको उसके द्वारा सफलता मिलेंगी। ऐसे इन्होंने अपने रंगमंच पर आकर के कहा। पहले वही संप्रदाय था, साधु सन्यासी महाराज थे, ये समझते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां कुछ नहीं है। मेरे पास अभी भी एक कागज पड़ा हुआ है ऋषिकेश के, वहां पर शिवानंद महाराज की वहां का एक सन्यासी लिखा हुआ था कि हम चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की नींव जो है ना, फाउंडेशन जो है ना, उसको उखाड़ करके फेंक दे, और इसके लिए हम पूरा ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैंने उनको लिखा कि ऐसा नहीं है, जो उसको उखाड़ने के लिए जाएंगे वही उखड़ जाएंगे, बाकी परमात्मा का कर्तव्य तो ऐसा है कि वो सत्योगी दुनिया स्थापन करके ही रहेंगे। परमात्मा के साथ इस प्रकार से युद्ध करना, अभी वाद विवाद करना कैसे पॉसिबल है? तो शुरू में ऐसा ही वो लोग मानते थे, फिर आखिर में हमारी संस्था बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, परिणाम रूप क्या हो गया, परमात्मा ने आकर के सारा ही अपने कर्तव्यों का पहले ही बता दिया था। आपको मालूम रहे, परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में शुरू किया कार्य, तो शुरू में कई लोग समझते थे कि ये बाबा का ही ज्ञान है, ब्रह्मा बाबा का ज्ञान है, क्योंकि तो बाबा पढ़ा लिखा था, बाबा अनुभवी था, बाबा विद्वान था, इसलिए सब समझते थे कि ये ब्रह्मा बाबा का ही ज्ञान है। वो भ्रांति, वो समझ जो है, वास्तविकता देने के लिए बाबा ने क्या किया, पुष्पमणि करके एक बहन थी जो मेंटली रिटार्डेड मतलब इतनी चतुर नहीं थी, मंद बुद्धि की थी, ऐसी मंद बुद्धि की पुष्पमणि बहन के तन में परमात्मा 15 दिन के लिए आए, वो आकर के अपना दिव्य कर्तव्य का पूरा ही साक्षात्कार कराया, मैं इसलिए आया हुआ हूँ, मैं ब्रह्मा तन से अलग हूँ, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्मा मेरी रचना है, मैं रचयिता हूँ, मैं क्यों आया हुआ हूँ, सारा ही जो है 15 दिन की उस जवारे की जो मुरली है, जो है कहानियां, जो है बाबा ने 15 दिन पुष्पमणि बहन के तन में जो ज्ञान दिया वो लिखत में उस टाइम पर था और उसी के आधार पर मालूम पड़ा परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या है। क्योंकि तब तक परमात्मा और आत्मा मन ब्रह्मा बाबा और परम श्री बाबा के कर्तव्यों में फर्क मालूम नहीं पड़ता था। 15 दिन अलग रहे उसके अंदर पुष्पमणि दादी के तन, पुष्पमणि बहन के तन में। इतने तक मैं आपको बताऊं, दादी ब्रिजेंद्रा ने हमको बताया था कि एक बार शिव बाबा को उस तन से कुछ जगह पर अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए जाना पड़ा, तो वो तन जो है ना, वो पुष्पमणि दादी सोई हुई थी, पुष्पमणि बहन सोई हुई थी, मम्मा और दादी ब्रिजेंद्रा दोनों ही आपस में विचार कर रहे थे, ये कौन है, ये पुष्पमणि में आया हुआ है वो कौन है। क्योंकि शुरू शुरू की बात थी, हमारे ज्ञान में भी इतना जितने ज्ञान की गहराई मालूम नहीं थी, अभी सब आपको मालूम पड़ गया है। उस टाइम पर तो मालूम नहीं था इतना, तो वो लोग भी आपस में मूंझे हुए थे। तो ब्रिजेंद्रा दादी और मम्मा दोनों आपस में राय कर रहे थे, कौन है ये पुष्पमणि के तन में आकर के ये बोलता है, वो कौन है, ऐसा सोच रहे थे। इतने में परमात्मा जो है ना अपना कर्तव्य करके वापस आए शिव बाबा और आकर के पुष्पमणि के तन में फिर से पधरामणि, जैसे आज गुजरा दादी के तन में आएंगे वो आप देखेंगे, ऐसे पुष्पमणि बहन के तन में वो आ गए और उठ करके बैठ गए। और मम्मा और ब्रिजेंद्र दादी जहाँ बैठे तो वहां जाकर के कहा, अरे बच्चियां अभी तक आप मुझे पहचानते नहीं हैं और अभी भी सोच रही है कौन आया है कौन आया है। तो मम्मा और दादी ब्रिजेंद्रा एकदम मूंज गए, अरे ये क्या है, हम यहाँ प्राइवेट में यहाँ बात कर रहे थे, उनको कैसे मालूम पड़ गया। ये शुरू शुरू की बात है, परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को हमारे पास भी इस प्रकार से मालूम नहीं था, आस्ते आस्ते मालूम पड़ता गया कौन है कैसे है। आपको मालूम होगा दादी, हमारी गुलजार दादी जो है खेलते खेलते, वो खेलने के टाइम पर वो होता है ना गुजराती में हम कहते संता कुड़ी, छुप जाने का और फिर ढूंढने करने का, वो अपने अगासी टेरिस थी उसके वो बाजू की दीवार में जाकर के बैठ गई थी, वहां जाकर के वो बैठी गई, उसमें वो ध्यान में चली गई और पहली बार उन्होंने ब्रह्मा बाबा को ऊपर साक्षात्कार में देखा, वो मूंझ गई, ये क्या हो गया है क्या हो गया है, सारा इतिहास है आपको मालूम होगा। और फिर उन्होंने आकर के बताया, बाबा को मालूम पड़ गया कि ऐसे ऐसे है, फिर उनको कहा कि आप दोबारा जाकर के देखो तो सही कौन है क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर भी बाबा के दिव्य कर्तव्यों का आस्ते आस्ते ही मालूम पड़ा, बाबा ने अपना कर्तव्य का पूरा ही पहले ही परिचय दे दिया था एडवांस में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार करा करके। हमने बच्चों की बाबा किताब में वो लिखा हुआ है कि कैसे बाबा समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और बाबा को साक्षात्कार होता है, पहले विनाश का सामने खून बहता है, एक दूसरे को मार रहे हैं, इस प्रकार से सारा ये बाम आदि फट रहे हैं, उस प्रकार से बाबा को पहले विनाश का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद 2 मिनट के बाद जो है ना वो शांत हो गया और उसके बाद आकाश में से सिकरा सितारे आने लगे और उसमें से देवताएं प्रकट होने लगे और बहुत सुंदर दैवी दुनिया का साक्षात्कार हुआ। मुझे खुद ने ब्रह्मा बाबा ने बताया हुआ था कि वो साक्षात्कार और सत्यु की दैवी दुनिया देख करके बहुत उसको मजा आ गई देखने। पहले जो विनाश का देख करके वो डर गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतने खून खराबी क्यों हो रही है, और बाद में देखा तो ये सत्यु की दुनिया देख करके बहुत खुश हो गए। और बाबा ने खुद ने हमको बताया और फिर बाबा ने वो आवाज सुना, इन सब के लिए तुम्हें निमित्त बनना होगा। और ब्रह्मा बाबा ने फौरन ऐसा हाथ खड़क, नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूं। बाबा ने खुद ने चौपाटी के नदी रहे वहां पर हम लोग घूमने को गए थे, मैंने बाबा को बताया आपका वो साक्षात्कार का हमें अनुभव तो बताइए, तो बाबा ने एक्टिंग करके बताया कि मैंने कहा मैं इसके लिए निमित्त नहीं बनना चाहता हूं, मैं लायक नहीं हूं। परंतु क्या हो गया, आस्ते आस्ते बाबा ने अपना कर्तव्य शुरू कर दिया, ब्रह्मा बाबा समर्पित हो गए, उनका परिवार समर्पित हो गया और ओम मंडी के रूप में हैदराबाद में बाबा ने अपना कर्तव्य शुरू कर दिया। देखिए बाबा का कर्तव्य कैसे शुरू हुआ, साधारण रूप में शुरू हुआ। जसोदा भवन के मकान में, बाबा का मकान था जसोदा भवन, उस जसोदा भवन के अंदर 10x10 के कमरे के अंदर बाबा ने शुरू किया ज्ञान देना 10x10 के। फिर संख्या बढ़ने लगी तो कमरा छोटा पड़ने लगा, कमरा जब छोटा पड़ने लगा तो क्या हो गया, एक दीवार निकाल दिया, एक दीवार निकाल गया तो 20x10 का कमरा बन गया, उसमें ज्ञान देना शुरू कर दिया, उसमें से संख्या बढ़ गई तो दूसरी का तीसरा कमरा जो था ऊपर 3 बेडरूम थे तो तीसरे कमरे की भी दीवार तोड़ दी, तो क्या हो गया 30x10 का कमरा बन गया, उसमें ज्ञान देना शुरू किया, वो भी कम पड़ने लगा। तो फिर बाबा ने जसोदा भवन के आंगन में कंपाउंड जो था उसमें ज्ञान देना शुरू किया। आप सबने दादी प्रकाशमणि का अनुभव सुना हुआ होगा कि वो बाबा वो जसोदा भवन के आंगन में मुरली चला रहे हैं और वहां पर दादी प्रकाशमणि पहली बार आई हुई है और उन्होंने देखा बाबा को और अंदर आकर के बैठ गई और वो ध्यान में चली गई। और इन्होंने वहां देखा तो जो थोड़े दिन पहले उन्होंने यही कृष्ण को देखा था, वो गेंद के रूप में खेलता हुआ देखा था, जब बाबा के सामने देखा तो वही कृष्ण उनके सामने आया, वो खेलता खेलता जा रहा था, वो खेलते खेलते ब्रह्मा बाबा की तरफ गया और ब्रह्मा बाबा में विलीन हो गया। तब उनको ख्याल आया कि जिसको हमने देखा था वही यहाँ सामने है, ये अनुभव है। ऐसे बाबा ने अपना दिव्य कर्तव्य शुरू किया और कर्तव्य करते करते बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कितने तक आगे बढ़ता गया वो तो आप जानते हैं, हम सब उसके साक्षी है कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य कैसे हुआ। आज ये प्रश्न नहीं उठ सकता है कि विनाश होगा या नहीं, आज तो प्रश्न ये है कि विनाश के लिए सब तैयारियां हो चुकी है, हम तैयार है या नहीं ये हो चुका है। और देखिए परमात्मा के दिव्य कर्तव्य कैसे है कि हमें वो संपूर्ण बनाते हैं, सर्वा कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक बनाते हैं, दैवी कुल के मालिक, दैवी कुल के सभ्य, पहला नंबर का जो है रॉयल कुल के रॉयल परिवार के इसके हमको सभ्य बनाते हैं। स्वप्न में भी नहीं था कि हम ये बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते क्योंकि मालूम ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। पहले तो यही मानते थे कि विद्वान पंडित आदि बनना होगा वो ही बन सकते हैं। अभी बाबा ने बताया कि विद्वान पंडित बनने की जरूरत नहीं है, बाबा ने अपने बताया हुआ है कि हमारे साधारण में साधारण अनपढ़ में अनपढ़ माता भी जो है वो भी विद्वानों से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। देखिए वास्तविकता बाबा ने बताई हुई है कि वो है क्योंकि इन विद्वानों को भी परमात्मा को पहचानने की शक्ति नहीं है, ये हकीकत है, इन विद्वानों को भी परमात्मा को पहचानने की शक्ति नहीं है। और ये बाबा ने कहा कि यहाँ की अनपढ़ में अनपढ़ माता ने भी, बाबा मिसाल के रूप में बता रहे हैं, उसने भी परमात्मा को पहचान लिया और ये कहती है कि मैं परमात्मा की बच्ची हूँ। सन्यासी महात्मा वो नहीं कहते हैं कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इन्होंने इन माताओं ने इन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। और पहचानने से क्या होता है, प्राप्ति होती है, पहचानने से क्या होता है उस प्रकार के कर्तव्य होते हैं, सरल कर्तव्य। भक्ति मार्ग में तो कितना कठिन दिखाया हुआ है, आपको मालूम है राम गीता के अंदर लिखा हुआ है आपको मुक्ति चाहिए 5 जन्म चाहिए, 5 जन्मों के पुरुषार्थ के बाद आपको मुक्ति मिल सकती है और 7 जन्मों के पुरुषार्थ के बाद आपको जीवन मुक्ति मिल सकती है। इतना कठिन पुरुषार्थ उसमें दिखाया हुआ है, 5 जन्म 7 जन्म। और यहां पर ब्रह्मा बाबा के जीवन के आधार पर देख लीजिए 69 में 36-37 में बाबा के अंदर प्रवेशता हुई, बराबर है 37 में, और 69 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर बाबा संपूर्ण बन गए, संपूर्ण बनने के लिए कितना समय लगा? 32 साल। मुक्ति जीवन मुक्ति की सारी प्राप्ति जो भी कहो, बाबा ने 32 साल के पुरुषार्थ में परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की शक्ति के आधार पर अपने जीवन को बना दिया 32 साल में। और वही पुरुषार्थ के लिए भक्ति मार्ग में कहा गया 5 जन्म या 7 जन्म। 5 जन्मों के आधार पर राम गीता में लिखा हुआ है, वशिष्ठ राम को बता रहे हैं कि 5 जन्म का पुरुषार्थ करो तो मुक्ति मिलेगी, 7 जन्मों के आधार पर तुमको जीवन मुक्ति मिलेगी। कहां 7 जन्म और कहां 32 साल संपूर्ण बनने के लिए। कारण यही है परमात्मा यहाँ, बाबा ने जो सीढ़ी का चित्र बनाया है ना, बहुत सुंदर है, इसमें परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के आधार पे आता है, लिफ्ट बताई हुई है। अब मालूम है सीढ़ी का चित्र बराबर पढ़ना, उसमें लिफ्ट बताई हुई, लिफ्ट के द्वारा ऊपर हम चले जाते हैं और फिर वहां से आएंगे और आस्ते आस्ते सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्मों की सीढ़ी उतर करके नीचू आएंगे। ये परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों का सिंबॉलिक रूप उसके अंदर दिखाया हुआ है कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य हमें लिफ्ट देता है। इतने छोटे से संगम युग के छोटे से समय में हम पुरुषार्थ इतना करते हैं कि जिसके आधार पर हमारा भाग्य न सिर्फ 21 जन्मों के लिए परंतु 84 जन्मों के लिए बन जाता है। बाबा ने यही कहा कि आपका 84 जन्म तक आपको यह भाग्य चलता है, पिछले लास्ट 2-3 जन्म में आपको थोड़ा कुछ दुख हुआ होगा, बाकी सारा ही आपका सारे कल्प का भाग्य आप अभी बना रहे हो। इतना सुंदर दिव्य कर्तव्य है परमात्मा का, हमारा इतना सुंदर कर्तव्य करके हमारा इतना सुंदर भाग्य बना रहा है भाग्य विधाता। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चे महान हो, आपने भाग्य विधाता को ही अपना बना दिया है। बाबा जैसी फिलोसॉफी और कर्तव्य दुनिया में और किधर भी नहीं है। यहाँ कोई भी अपने बाबा को मानते हैं, कोई गुलाम है, किसी ने गाया हुआ भक्ति में, मैं गुलाम हूँ तेरा परमात्मा की, किसी ने गुलाम माना, किसी ने क्या माना, क्या क्या मान लिया है। यहाँ पर हम कोई ऐसा नहीं मानते हैं, हम तो यही मानते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं। कोई मानता है यहाँ कि मैं परमात्मा का गुलाम हूँ? कोई मानता है? हम सब मानते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, मानते हैं बराबर, बच्चे या बच्चियां जो भी हैं, हम यही मानते हैं ना। देखिए कितनी फिलोसॉफी हमारे में चेंज हो गई। मैं भक्ति मार्ग में गया था, मैं निर्गुण में कोई गुण नहीं, हाँ अपने को निर्गुण मानते, कोई हमारे में कोई गुण नहीं है ऐसा मानते हैं, मैं साहब मैं तेरा गुलाम, मैं गुलाम, इस प्रकार की ऐसी गुलाम की मान्यताओं में रहने वाले, ऐसी मानसिक हमारी अधपतन को जो भी कहो, ऐसी स्थिति में रहने वाले आज हम कहते हैं हम कौन, हम परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चे के रूप के जैसे होता है ना, राजा के बेटे के राजकुमार को नशा होता है कि मैं राजा का कुंवर हूँ, होनहार राज्य का मालिक हूँ। इस प्रकार से हम बच्चे भी कहते हैं, आने वाले भविष्य के हम मालिक हैं। बाबा परमात्मा हमको उसके इतने स्टेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमारे में एक आत्म अभिमान स्वाभिमान का एक बहुत सुंदर गुण शक्ति जो भी कहो हमारे में परमात्मा भर रहे। ये शक्ति ये प्राप्ति हमको दुनिया में किधर उधर कहां भी नहीं होती है, ऐसी प्राप्ति के लिए हम लायक बनते हैं। हाँ इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई, ये आप बच्चे हो। देखिए हमारा भाग्य का कितना सुंदर, बाबा कहते हैं बाबा भी हम भक्ति मार्ग में हमने परमात्मा के गुण गाए और यहाँ पर परमात्मा हमारे गीत गाते हैं, बोलिए ऐसा सुंदर भाग्य और किसी का होगा? बाबा कहते हैं मेरे बच्चों का गीत गाता हूँ, मैं बच्चे वहा बच्चे वहा बच्चे वहा बच्चे कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं ना, मैं आप बच्चों का गुणों का गीत गाता हूँ। भक्ति मार्ग में हमने उनके गुणों का गुण गाया, यही फर्क है। भक्ति मार्ग में हमने उनका गीत गाया और ज्ञान मार्ग में परमात्मा हमारा गुण गाता है, ऐसा हमको गुणवान बनाता है, ऐसा हमको संपत्तिवान, ऐसा हमको हमारा दिव्य जीवन श्रेष्ठ जीवन बनाता है। ऐसे पांच तत्वों को भी संपूर्ण बना करके सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। दुनिया में किसी के पास विश्व परिवर्तन की शक्ति नहीं है, परमात्मा में ही यह विश्व परिवर्तन कराने की शक्ति है। और ये कराने की शक्ति का अंदाज हमको पूरा ही पूरा पिछली मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बाप के पास ये शक्ति है, आज चाहे तो एक सेकंड में करा सकता है। त्रिकालदर्शी बाप जो है ना, अपना परिचय बहुत कम बार, अपनी अथॉरिटी बहुत कम बार दिखाते हैं। ये बाबा ने हमको अथॉरिटी दिखाई हुई है। परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार का करो, कहो जो भी कहो, हमको परमात्मा के द्वारा ही होता है। आज वो दिन है, आज हमारे लिए वो सौभाग्य का दिन है कि आज हमको वही परमात्मा, बाबा कहते हैं कि आप बच्चे कितने पावरफुल हैं कि परमात्मा को भी निराकार से साकार स्वरूप में लेके आने की तमन्ना खींचने के लिए पुरुषार्थ आप बच्चों में है, ताकत आप बच्चों में है। इतनी सुंदर महिमा जो है ना हमारे पास कर रहे हैं भक्ति मार्ग में। मैं आपको बताऊं, एक सन्यासी महाराज कैलाश की यात्रा पर लेके गए और कैलाश पर्वत दूर से दिखा करके कहा, देखिए कैलाश भगवान को आप देख लीजिए, बस वही भगवान है, उसको आप पांव पर पढ़ लीजिए। ऐसा साक्षात्कार कराते हैं भाई, कैलाश पर्वत को देखो और कैलाश भगवान को समझ लो, इस प्रकार के ऐसे साक्षात्कार कराते हैं। कहां वो साक्षात्कार और कहां आज आप साक्षात्कार करेंगे परमात्मा को अपने इन आंखों से, स्थूल आंखों में परमात्मा का दिव्य अवतरण देखना। आज तक मैं आपको बताऊं, भक्ति मार्ग के अंदर कभी भी हमने सोचा नहीं होगा कि हम इस जन्म के अंदर परमात्मा को साकार स्वरूप में अपने इन स्थूल आंखों से हम देख सकेंगे। था किसी को मालूम था, किसी को संकल्प में भी मालूम नहीं था कि हम ये भाग्य सौभाग्य हम प्राप्त कर सकेंगे। ये हमको वास्तविकता का रूप मिला हुआ है कि हमें अपने ही आंखों से, भक्ति मार्ग की कहानी है कि अंधा जो है ना उसके सामने भगवान प्रसन्न हो गए और उसको कहा कि आप एक वरदान मांग लो। वो अंधे को पूछा गया, अंधा बहुत होशियार था, गरीब था, उसने भगवान से मांग लिया कि एक ही वरदान मांगना है ना। कहा एक ही वरदान मांगना है। कहा भगवान मैं अपनी आंखों से मेरे सातवें बच्चे के पौत्र की बहू को सोने के बर्तन में छाछ बलोते हुए जो है ना वो मैं देख सकूं, ऐसा मुझे वरदान दो। उसने सब कुछ मांग लिया एक बात में, हाँ सातवें बच्चे को मांगना, शादी भी मांग लिया, सात बच्चे, सात बच्चों के भी पौत्र और उसके भी बहू, और उसको सोने के बर्तन में छाछ बलोते हुए, मतलब उसको देखा, छाछ का मंथन करते हुए देखा। ऐसी ऐसी कहानियां भगवान के बारे में, उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में हमने सुनी, क्या क्या कहानियां भक्ति मार्ग में सुनी, कर्तव्यों का मालूम नहीं था। वही रामायण देखिए, हम भक्ति मार्ग में पूछते थे, राम और परशुराम दोनों भगवान के अवतार। जब राम जो है जानकी के साथ शादी विवाह करके आ रहे हैं, परशुराम सामने गए हैं कि अरे कौन है तुमको भगवान, तुमको तुम अपने आप को भगवान कहता है, मैं कैसे मानू। भक्ति मार्ग में भक्ति कहानी है, परशुराम सामने आ गए कि मैं तुमको भगवान मानने के लिए तैयार हूं, तुम कैसे होगा। दो परमात्मा के दो अवतार एक दूसरे के सामने मिलते हैं परंतु तो एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। बोलिए, ऐसी हमने परमात्मा के कर्तव्यों की बात कही है। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुमने वहां का धनुष तोड़ा ना जनक के दरबार में, कि मेरा पास है विष्णु का धनुष है, तुम उठा करके दिखाओ तो मैं मानू कि तुम परमात्मा हो। उसने दिया, राम ने फट करके उठा लिया उठा करके उसके अंदर अपने तीर जो है वो चढ़ाया लगाया, तो तब परशुराम ने कहा अरे हाँ मैं मान गया आप भगवान का अवतार हो। तब तक दोनों अवतार एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। यह है परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में ऐसी भ्रांतियां। तब राम ने कहा कि अभी तो मैंने तीर चढ़ा दिया है, मैं क्या करूं? तो परशुराम ने कहा नहीं नहीं मेरा वध मत करना, सुंदर कांड जो है, सुंदर वन जो है, वहां के बहुत ऐसे लोग रहते हैं, उसकी हत्या कर दो, वहां तीर वहां पर लगाओ और वहां पर छोड़ दो। और वहां तीर चला गया। और इस प्रकार से देखिए दोनों कर्तव्य परमात्मा के दो दो अवतार आमने सामने होते हुए भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। ऐसे ही परशुराम और कृष्ण के जीवन के बीच में है, दोनों अवतार वहां पर है, मौजूद है, एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, कभी भी आमने सामने मिलते भी नहीं है। ऐसी कहानियां जो है ना ऐसी बनी हुई है, इन कहानियों में से ही वास्तविकता को पहचानना और समझना कितना कठिन है, पर तो हम सब ने उसमें से समझ लिया वास्तविकता क्या है, सृष्टि का सच्चा इतिहास क्या है, वही परमात्मा हमको बता रहे हैं। और कितना सहज है, हम लोगों ने समझा ज्ञान बहुत बड़ा होगा, विशाल क्या होगा, इन ज्ञान का जो मक्खन जो है ना परमात्मा हमको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ज्ञान का मक्खन दो शब्दों में कहना है तो मनमना भव और मध्याजी भव, इन दो शब्दों में सारा ज्ञान का सार आ जाता है। विस्तार को सार का विस्तार करना सहज है, परंतु विस्तार का सार करना बहुत कठिन है। मैं आपको बताऊं फिलोसॉफी के दुनिया में विस्तार का सार करना बहुत कठिन है। दुनिया में सार का विस्तार बहुत करके दिखाते हैं, परमात्मा ने सारी दुनिया का इतिहास विस्तार का सार करके दिखाया है। परमात्मा ने सभी की वास्तविकता बताई। नई चीजों के ऊपर श्रद्धा निर्माण करना बहुत कठिन है। 14वीं सदी में क्रिश्चियनिटी के अंदर मार्टिन लूथर आदि हो गए, इन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म के बारे में जो भी उस टाइम की प्रचलित मान्यता थी उसमें से दूर करके प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की स्थापना की। नए संप्रदाय के ऊपर वो लोग श्रद्धा नहीं बिठा सके, इसलिए क्या हो गया, श्रद्धा शून्य समाज हो गया। परमात्मा ने क्या किया अपने दिव्य कर्तव्यों के आधार पर कि वास्तविकता क्या है, श्रुति के सृष्टि के इतिहास की, परमात्मा के बारे में, जीवन के बारे में आदि सब बातों के बारे में वास्तविकता बता करके श्रद्धा शून्य समाज नहीं रचा। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य यही है जिसके आधार पर हमें पवित्र रहने की बाबा ने शक्ति दिया। भक्ति मार्ग में तो गाते थे कि आग और कपूस जो है इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, इसलिए घर बार छोड़ने की बात आती थी। बाबा ने वो सही करके दिखाई कि आप साथ में रह सकते, घर गृहस्थ में रह सकते हैं, पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते, ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास हमारे में निर्माण किया। परिणाम रूप क्या हो गया, हम ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहने हैं, भाई हैं, जिन्होंने ऐसा जीवन समर्पित किया। हम लोग पिछले वर्ष तिरुपति में गए हुए थे, तिरुपति आप जानते हैं साउथ में मंदिर है, वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने गए, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 18,000 काम करने वाले हैं, पर सब नौकर है, सब यही चाहते हैं पगार कितना मिलेगा। उनके सामने तीन बातें हैं, उन्होंने बताई, हमारे सामने तीन बातें हैं, एक पगार कितना मिलेगा मास के आखिर में, दूसरा वर्ष के आखिर में इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। नौकरी में आप जानते हैं इंक्रीमेंट मिलता है, पगार में कितना बढ़ोतरी होगी, और तीसरा बोनस कितना मिलेगा। यही लक्ष्य है हमारा और इसके आधार पर हम यहाँ काम करते हैं। हमने उनको कहा कि हमारे पास जो है 10,000 भाई बहन है, कोई परमात्मा कोई नौकर नहीं है, कोई पगार की इच्छा नहीं रखते हैं, किसी को बोनस की इच्छा नहीं है और किसी को इंक्रीमेंट की भी इच्छा नहीं है। हम यहाँ बाप के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं। कितना सुंदर स्वाभिमान हमारे में नक्की किया है, निर्माण किया है। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसे सेवाधारी समर्पित एक भी नहीं है। हमने कहा यही परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है कि ऐसे स्वाभिमानी संपूर्ण समर्पित जीवन निर्माण करने वाले की रचना करते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। वहां तो पगारदार नौकर निर्माण करते हैं, नौकर बनाते हैं। मीरा ने भी भजन गाया है, प्रभु जी मुझे चाकर राखो जी, चाकर रेसु गोविंद गीत गासु। आए भक्ति मार्ग मालूम है गीत, भक्ति मार्ग में हम सब ने गाया था, प्रभु जी मुझे चाकर रेसु चाकर। मीरा ये मथुरा बेन खरे का महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में गाया हुआ गीत है, प्रभु जी मुझे चाकर राखो चाकर रेसु गोविंद गीत गोविंद का गासो। इस प्रकार से भगवान के चाकर बनने वाले वहां क्या चाकर, और कहां यहां पर भगवान के बच्चे बनने वाले। कितना सुंदर बाबा का ये दिव्य कर्तव्य है कि हमको इतना श्रेष्ठ बनाते हैं बाबा। इसलिए कई बार मैं सोचता हूं ना कि बाबा की गुण कर्तव्यों की महिमा करो तो कितना सुंदर महिमा है। श्रद्धा शून्य समाज नहीं है, श्रद्धा पूर्ण समाज। और वास्तविकता के आधार पर क्या क्या सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का सच्चा इतिहास क्या है, सच्ची ज्योग्राफी क्या है। बाबा की जो तीन लोग की जो चित्र है ना, उसमें बाबा परमात्मा ने दुनिया का वास्तविक भूगोल, ये पृथ्वी बीच में सूक्ष्म वतन ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी और उसके ऊपर मूल वतन, ये दिखाया हुआ है। ये सच्ची ज्योग्राफी है विश्व की, वो दिखाया हुआ है। कितना सुंदर एक छोटे से चित्र के अंदर सृष्टि का सारा इतिहास बता दिया। जगदीश भाई ने जब कल्प उसका चित्र देखा तब कहा ये परमात्मा ही बता सकते हैं कि सभी धर्मों का समन्वय कर करके एक वृक्ष की सभी डाल डालियां है, इस प्रकार से दिखाने करने का, और ऐसा चित्र एक परमात्मा ही बता सकते हैं, बना सकते हैं। सभी धर्मों का समन्वय करके एक धर्म की स्थापना करना, ये कोई मासी का घर नहीं है। मैंने आपको कहा ना, सार का विस्तार हो सकता है, विस्तार का सार कि सभी धर्म एक वृक्ष के बदाल है, वो दिखाना बहुत कठिन है। ये परमात्मा ने करके दिखाया हमको। इसीलिए लास्ट में अंतिम में यही कहूंगा, भक्ति मार्ग में जो है ना कि सारी पृथ्वी जो है उसको कागज बना दो, सभी वृक्ष जो है उसको कलम बना दो, और समुद्र जो है उसको स्याही बना दो, और फिर परमात्मा के गुणों की महिमा लिखो तो भी वो कम पड़ेंगे। ये वास्तविकता यहाँ की है कि इन परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की जितनी महिमा करे इतनी कम है। बाकी तो आज हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है, यही परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को आज हम अपने आंखों से सामने देखने वाले हैं। ओम शांति।